फिर इसी तरह से आप देखिए कि अगली चीज, शौहर की गैर मौजूदगी में इसके माल और इसकी इज्जत की हिफाजत करने वाली औरत, ये कौन सी चीजें होती हैं? घर की चीजें, वही बात है, घर का खाना पीना, ग्रोसरी, जो चीज शौहर ले आए आप उसको बिस्मिल्लाह पढ़कर ले, शुक्रिया बोले, थैंक यू बोले, अल्लाह ने उनके दिल में डाला, वो लाए, आपको पसंद आए ना आए इसकी बात अलग है, लेकिन यहाँ वही बात है कि औरत को फजूल खर्च नहीं होना चाहिए उसकी चीज़ों की हिफाजत कर। फिर उसके तरह आप देखिए कि उसकी इज्जत की हिफाजत, अपनी इज्जत, यानी शौहर की गैर मौजूदगी में भी औरत अपनी आंखों, अपनी नज़रों, अपने हाथों की हिफाजत करें, इज्जत की, समझ आ गई? फिर इसी तरह शौहर की इज्जत की हिफाजत औरत कैसे करेगी? उसकी बुराइयाँ ना करके। अगर एक औरत अपने शौहर की बुराइयां दूसरों के साथ करती है तो उसने उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं की। लिख लें, कभी अपने शौहर की बुराई किसी से नहीं करनी सिवाय अल्लाह से, और अगर बात नाकाबले बर्दाश्त होता तो उसी से कर लें, अच्छे तरीके से बैठे, हर वक्त नहीं, टाइम लें अपने शौहर से, थोड़ी देर बात करनी है, कब? जब वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, खाना खा चुके हों, रिलैक्स्ड मूड में हो। अब ये नहीं कि आज वो बेचारे बड़े खुश थे, घर में रहेंगे, चलो जी आज का दिन घर में बच्चों के साथ रहते हैं, तो आप उसी दिन का टाइम लेके उनके सारे बुराइयां शुरू कर दें। डॉक्टर भी देखिए दवा देता है ना, तो किसी गोली के साथ लिखा होता है इसको खाली पेट खाना है, किसी गोली के साथ लिखा होता है कि इसको खाने के बाद खाना है। बीवी को भी इस बात की समझ होनी चाहिए कि अपने शौहर की खूबियां या खामियां कब उससे शेयर करना है। फिर आप देखिए शौहर की इताअत करने वाली, लिसनिंग वाइफ, आज लोग कहते लो मैं क्यों आपकी सुनूं, आप भी तो मेरी सुने। हमेशा याद रखिए कि जो आप देंगे ना वो आपको मिलेगा, देने वाले ही पाते हैं। फिर इसी तरह वफादार बीवी, वफादार क्या होती है? बेवफा ना हो, बात बात पे छोड़ने की धमकियां ना दे, टॉलरेंट हो, अपने आप को बांध के रखे, हो गई शादी यही होनी थी, तोड़ सकते हैं तो तोड़ लें, जाइए तलाक याफ्ता औरत कहलाइए, कहलाइए, नो प्रॉब्लम, दोबारा इद्दत की मुश्किलात से गुजर कर फिर निकाह करवाइए, जाइए, कितने मरहले हैं, तो चुप करके बैठ जाने में फायदा नहीं। देखिए एक होता है हराम हलाल, मर्द बेनमाजी है, मर्द शराबी है, किरदार का खराब है, फिर तो एक रात ना रहे उनके साथ, नेवर। लेकिन अगर आप जैसा ही है, बल्कि आपके बराबर है, या किसी में वो अच्छा किसी में आप अच्छे, तो चुपके से बैठे रहें, सब्र करें, उसकी खामियां दिन ब दिन कम हो, आपकी खूबियां उसके ऊपर आए। लेकिन छोड़ देने की धमकियां, अलग होने की बातें करने वाली औरतें कभी भी अपनी जगह नहीं बनाती। फिर इसी तरह सब देखिए औलाद से मोहब्बत करने वाली, ये भी एक औरत की खूबी है। पहली बात है ये तो अल्लाह ने डाल दी दिलों में, और दूसरी बात है कि औरत अगर अपने बच्चे की देखभाल करती है तो किस पे एहसान करती है, ना करे, को मना भी करेगा ना वो फिर भी करेगी, ऐसी है ना, क्योंकि औरतों को करना ही होता है। बस औरतें अपने ही बच्चे को देखना, टेक केयर करना, अपने शौहर के खाते में डाल देती है, तुम्हारे बच्चे को पाल रही हूं, तो तुम्हारा बच्चा अगर वो किसी और औरत से लाके आपके हाथ में दे देगा तो क्या आप उसको पालेंगी? कभी भी नहीं पालेंगी। आप ये कि हमारे बच्चे को पाल रही हो, बल्कि के अपने बच्चे को पाल रही हो। आप देखेंगे ये छोटी छोटी चीजें इतना खूबसूरत बॉन्ड बना देती हैं इंसानों के बीच में, कि इंसान कभी भी उस चीज से अपने आप को दूर कर ही नहीं सकता। अच्छा बात मैं कि अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करती, आप सोच सकते हैं कोई बच्चे से मोहब्बत ना करे? एक जगह क्लास में मैंने ये चीज शेयर की थी कि एक औरत जो एनिमल राइट्स के लिए फाइट कर रही है वेस्ट में, जानवरों के बच्चों से उनको इतना प्यार, पेट्स उन्होंने इतने पाले में, लेकिन जब वो खुद प्रेग्नेंट हुई तो वो अपने बच्चे से नफरत करती थी, कहती थी मुझे लगता है मेरे अंदर एक मॉन्स्टर है, मेरे अंदर एक जिन का बच्चा, वो अपने बच्चे को नहीं देख सकती थी। फिर बच्चा जब पैदा हुआ ना तो उसने उस बच्चे को अपने से अलग किया। अब क्या हुआ कि आप उस औरत को क्या कहेंगे कि जो जानवरों से प्यार करे, ह्यूमन राइट्स की बात करे, लेकिन अपने बच्चे से प्यार ना करे? तो बच्चों से प्यार करना औरत की निस्वानियत है और माँ की ममता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अपने शौहर के तमाम मामलात की अमीन, कितने नंबर हो गए लिस्ट में?
12
हो गए। शौहर के मामलात की अमीन, अमीन किसको कहते हैं? امانت ادا کرنے لی. شوہر کے کیا معاملے ہوتے ہیں پہلے یہ بتائیے. دیکھیے ہر انسان کے معاملات ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان کسی کے سامنے نہیں کھلتا نا وہ بیوی کے سامنے کھلتا ہے. از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ آپ کبھی سوچیں نا, نفس سلم, آپ نے اگر اللہ کے نبی کے بارے میں پڑھا یا سنا ہو, باہر وہ ایک نبی بھی تھے, حاکم بھی تھے, مبلغ بھی تھے, امام مسجد بھی تھے, جرنیل بھی تھے. کتنے ڈفرنٹ اینگلز ہیں. راہبر کامل ایک بک ہے سیرت کی, اس میں 19 ڈفرنٹ ٹائپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بک ہم نے پڑھی ہے, اب کلاسز میں بھی پڑھاتے ہیں. اتنے ڈفرنٹ اینگلز ہیں, ہر اینگل ایک سے ایک بڑھ کے بارو. لیکن آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے؟ انتہائی بے تکلف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ بہت ریلیکسنگ تھی. اب ایک بیوی اپنے شوہر سے کوئی بات سنتی ہے تنہائی میں, اکیلے میں, پھر اب دیکھیں جذباتی لمحات آتے ہیں انسان پر. جذبات میں بہہ کر انسان کوئی بات بھی کہہ سکتا ہے, کوئی حرکت بھی کر سکتا ہے. تو بیوی کو اس بات کو کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نہ شوہر اور نہ بیوی ایک دوسرے کے ذاتی راز یا اپنے تنہائی کے تعلقات کسی سے شیئر کرے, نہ بیوی اپنی سہیلی سے کرے اور نہ شوہر اپنے دوستوں سے کرے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے کلچر میں کیا شادی کے نام پہ دلہا کو اور دلہن کو جو بیکار قسم کی چھیڑ خانیاں ہوتی ہیں, اس کی اسلام میں قطن کوئی اجازت نہیں ہے. تو ایک اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟ وہ اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرتی. کس طرح؟ کہ میں نے ان کی ایموشنل تھنگس دوسروں کو شیئر نہیں کرنی. 13 پوائنٹ ہو گئے. 14th پوائنٹ, شوہر کے جنسی جذبات کا احترام کرنا. نوٹ کیجئے گا جملے کو. ایک عورت اپنے مرد کی سیکشل نیڈ پوری کرے, یہ وہ نہیں ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کا احترام, احترام کو انگلش میں کیا کہتے ہیں ہم؟ رسپیکٹ. ہم عموماً کس چیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ قرآن کی رسپیکٹ کرتے ہیں, مصلی کی, جائے نماز کی, مسجد کی, بیت اللہ کی, زمزم کی, بلکہ مدینہ سے آئی ہوئی کھجوروں کی گٹھلیوں کی بھی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ لفظ ہے رسپیکٹ کرے اس کے جذبات کی. دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو عورت اپنے ہسبینڈ کے ایموشنز کی, اس کی سیکشل نیڈز کی رسپیکٹ کرتی ہے, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. مجھے بتائیے اس سے بھی کوئی آسان چیز ہے اللہ کو راضی کرنے کی؟ یعنی آنر سمجھ کر اس حق کو ادا کرے. یہ نہ لگے کہ مرد بیچارہ مجبور ہے. جیسے آپ دیکھیں نا, ایک بھوکا شخص ہے تو کھانا آپ اس کے آگے ایسے بھی پھینکیں گے وہ کھائے گا, اور عزت سے احترام سے اگر اس کے سامنے پیش کریں گے تو بھی تو کھائے گا نا. تو اگر آپ اپنے شوہر کی ضرورت پوری کرتے ہی ہیں اور آپ کا مزاج بنا ہوا, آپ روب ڈالتے ہوئے, غصہ کرتے ہوئے, تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ذات جو آسمان پر ہے وہ ناراض رہتی ہے جب تک کہ شوہر راضی نہ ہو جائے. اب آپ کہتے ہیں یہ ڈسکریمینیشن ہے, اسلام جو ہے وہ مردوں کی سائڈ لیتا ہے. آپ ذرا اس کو دیکھیے ذرا غور سے. اللہ تعالیٰ نے یہ آنر کتنی بڑی آنر دے دی. پیچھے بھی انٹرو میں بات ہوئی اس پہ, لیکن چونکہ آج ٹاپک کے اندر آ گئی ہے تو پھر اس کی ضرورت ہے. کیا آپ دیکھیے کہ اللہ نے ایک عورت کو یہ آنر دی ہے. اگر آپ کے شوہر اللہ کے حکم سے مسلمان ہیں, نمازی ہیں, غلط تعلقات نہیں ہیں ان کے, آپ سوچیے کئی عورتیں ہیں آنسوں سے روتی ہیں کہ مرد خراب ہے دوسری عورتوں کے صبر. ایون ایسے بھی مرد ہیں کہ بیویاں کہتی ہیں جب وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں نا تو وہ سات نام دوسری لڑکیوں کے لے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت ہے. کتنا اللہ کا شکر ہے, ایک پیور, ایک صاف ستھرا تعلق ہے. آپ کیوں مجبور کرتے ہیں کہ آپ کے شوہر کے تصور میں بھی کوئی دوسری عورت آ جائے؟ اچھا یہ تو ایسی ہے, اگر فلاں ہوتی تو بہت اچھی ہوتی. تو رسپیکٹ کریں, اور ریئلی اس کو رسپیکٹ کریں. یہ چیز عمر کے ساتھ نہیں ہے, نئے پرانے کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ اس کو ایسا کہہ لیجئے کہ آنر سمجھتے ہوئے اس کام کو کریں. اور اگر اس چیز کو آپ نے مینٹین کر لیا, باقی کام آپ کے کافی زیادہ آسان ہو جائیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, ہر انسان کے اندر ایک جوش ہوتا ہے, غصہ آتا ہے نا, تو جب آپ غصہ نکالتے ہیں پھر وہ کدھر جاتا ہے؟ چلا گیا, ختم ہو گیا. اسی طرح فطری طور پہ آپ کو واش روم میں جانا ہے, کوئی آپ کو روک لے تو فرسٹریشن تو ہوگی نا. آپ کہ کھانا سٹک ہوا ہوا ہے اور آپ وومٹ نہیں کر پا رہے, یا آپ کا کھانا ڈائجسٹ نہیں ہو رہا, سٹک ہو گیا نا. اسی طرح ایموشنز کو ریلیز کرنے دینا چاہیے, لیٹ دیم ڈو, اس سے فائدہ بھی آپ کو ہی ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہارمنی بھی ہوتی ہے. میں نے یہ ایک چیز آزمائی ہے کہ جس بچے کو آپ پکڑیں साफ करें, करीब रहें, आपको उससे ज्यादा प्यार होगा। ये मैं अपने ऊपर लेके बताती हूँ कि मेरी शादी से पहले मेरे भाइयों के बच्चे हुए, माशाल्लाह जब शादी हुई तो तकरीबन दोनों के ही बड़े तीन तीन बच्चे थे भाइयों के। उनको देखा, उनके लिए वो उस वक्त में कपड़े भी सीते थे हम शौक में और जो भी छोटी मोटी चीज़ें। फिर भाभियाँ हॉस्पिटल गईं, फिर बच्चे हुए, हमने इन बच्चों को अपने हाथों से खिलाया, राइट। उसके बाद जब मेरी शादी हुई, मुझे अब सही नहीं याद कि कौन सा बच्चा उसके बाद हुआ, लेकिन मैं अपने दिल से बता रही हूँ, इस वक्त वो सुन भी नहीं रहे होंगे, कि जो बच्चे मेरे सामने हुए थे, जिनको मैंने लम्हा लम्हा देखा साल दो तीन साल का होते हुए, आज भी वो मेरे दिल के अंदर रहते हैं। और जो बाद में मेरे हुए, तो प्यारे तो वो भी लगते हैं, वो प्यार नहीं उठता। क्यों वो नहीं हुआ? क्योंकि मैंने उसको पकड़ा, संभाला। एक फितरी सी बात है, आप किसी का बच्चा लेते हैं तो थोड़े दिनों में आपको अपना क्यों लगता है? आपने देखा ना, लोग पालते हैं फिर जान से लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस बच्चे को आप ज्यादा संभालेंगी, प्यार करेंगी ना, वो आपको अपना लगेगा। शौहर बीवी भी ऐसे ही होते हैं, जितना साथ बैठेंगे। देखिए ये इतनी पर्सनल चीज है, लेकिन अगर हम इसको आपसे ना शेयर करें तो फायदा नहीं। आज साइंस ने इस चीज को साबित किया है, यानी मेरे पास एक आर्टिकल था कि जब बगैर किसी, यानी हाथ से हाथ टकरा रहा है ना, बीच में कपड़ा नहीं है, अब बाजू पे हाथ रखते हैं ये कपड़े पे, जब जिस्म से जिस्म टच करता है ना, तो रेज निकलती है और ये प्यार की अलामत होती है। सिर्फ छूना, जरूरी तो नहीं होता कि इंसान हर वक्त अपनी ख्वाहिश के लिए मिले, लेकिन आपको रोमांटिसाइज करना चाहिए। आप जस्ट लाइक अपने हाथों से, बालों में इस तरह फीलिंग दें कि आप उनकी केयर करती हैं। आप देखिएगा गुस्सा दूर, सब कुछ दूर। और ये काम लोग तो, अल्लाह रहम करे, मैं कहती हूँ इसी को तो जिना कहते हैं, इसी को तो डेटिंग कहते हैं, यही तो हराम ताल्लुक आता है, इसी पे तो पूरा फिक्शन चल रहा है। तो अल्लाह ने आपको एक हलाल दी, आप कहां कर सकती हैं ये? इसको छोटे एक डिफरेंट एंगल से भी समझे। आप कहते हैं ये शौहर की मजबूरी है जो मेरे सर पे डाल दी गई, तो आप ये जज्बात कहां से पूरे कर सकते हैं? छू सकते हैं आप किसी को, टच कर सकते हैं? और याद रखिए कि मर्द में ये चीज पहले से हो जाती है, औरत में साथ साथ वक्त पे होती है। और ये पता कब चलता है? ये कहानी बड़ी थी मैंने एक दफा, कि शादी हुई, शुरू में बड़े खुश थे, लव मैरिज थी, कुछ अरसा साथ रहे तो लगा नहीं हम एक दूसरे के साथ फिट नहीं है, सॉरी वी डोंट मैच विद ईच अदर। अब क्या करें? बहुत सोचा तो उन्होंने कहा कि लेट्स सी, वी शुड टेक अ ब्रेक। मियाँ कहते हैं कि तुम चली जाओ मैके, और ये है वो है किस्सा मुख्तसर। यानी उनको ये लग रहा था कि अब हमें एक दूसरे पे मोहब्बत नहीं महसूस होती। तो जब वो लड़की को ट्रेन पे बिठा के आ रहा है, और वो लड़की गाड़ी में ये वापस आ रहा है ना, तो उसी 10-15 मिनट की जुदाई के बाद वो लड़की उसको मैसेज करती है, आई मिस यू, नो आई फील द सेम फीलिंग्स व्हाट आई वाज मिसिंग इन द बिगनिंग। छोटी सी जुदाई, ये जो दिन में आप देखिए शौहर बीवी के ताल्लुक के बीच में अल्लाह ताला 8-9 घंटे का गैप डालता है ना, यानी मिसाल है आप सब आप इधर बैठे हैं तो आपके हस्बैंड काम भी गए हुए हैं ना, किसी की रूटीन कुछ और होगी, किसी की कुछ होगी, लेकिन मोस्टली सुबह उठ के मर्द घरों से जाते हैं ना। आप कभी सोचें, और ये आप उनसे पूछें जिनको मैं और बहुत जानती हूँ कि जिनके मर्द कहीं जाते ही नहीं, यानी अमेरिका में अब माशाल्लाह कंप्यूटर का काम इतना आम है, हर सेकंड हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ये घर है ना तो इस कमरे में बैठे बीवी काम करी, वो अपने काम में बीच में उठते हैं, इवन कहीं जा भी रहे हैं तो वो साथ साथ कंप्यूटर पर अपने आप को अवेलेबल रखते हैं। वो कहती हैं कि मेरा दिल करता है ये कुछ देर जाए। यकीन करें अल्लाह ने ये इतना खूबसूरत तरीका बनाया है कि मर्द कुछ घंटे जाएं, दोबारा मिलो तो उसी जज्बे से मिलो, शर्त ये कि आप इसको एंजॉय करें। अब दोबारा लेंगे, अब दोबारा मुलाकात होगी, अब दोबारा होंगे, जैसे आप देखिए कि वो कहते हैं ना कि मुख्तसर जुदाई मोहब्बत में जोश पैदा करती है, ये मुख्तसर ही है ना, 6-7-8-10 घंटे जितने भी। और जो माशाल्लाह कारोबारी मर्द है वो तो 15 घंटे बाद भी घर आ जाए तो बड़ी मेहरबानी है आपकी, अब आ गए, ऐसी है ना। लेकिन तवील जुदाई, लॉन्ग लॉन्ग टाइम जो मिलता है ना, ये मोहब्बत की आग को ठंडा कर देती है, फिर यूज्ड हो जाते हैं। अब देखिए कई मर्द हैं, कई साल से अमेरिका में जाके बैठे होंगे, बीवियां इधर बैठी हुई, मर्द दुबई में गया हुआ है तो बीवी इधर है, तो वो बीवियां क्या हो जाती हैं, फिर सख्त हो जाते दिल। तो लिहाजा एक दूसरे को इंजॉय करें, उसी तरह इंतजार करें। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, अब आप देखिए ये हदीस आपने सुनी होगी कई बार, लेकिन आज इस टेक्स्ट में शायद आपको ये फायदा दे दे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मैं जब कभी आपसे इजाजत मांगती कि मुझे मेरे माँ बाप के घर रात रहने दें, तो आप नहीं रहने देते थे, तो क्या ये जुल्म करते थे? मोहब्बत की बात थी ना। अब एक मर्द अब अपनी बीवी से कहता है, जाओ मेरी जान छोड़ दो, जाओ अपने बाप के घर में, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मुझे बताइए कि ये बात सुन के औरत खुश होगी? या मर्द कहता है कि मैं आपके बगैर रह ही नहीं सकता, आप मेरे पास ही रहें, आप किधर हैं, आप आ जाएं, आप देर से क्यों आ रही हैं, कौन सा फीलिंग अच्छी है? और यही आयशा कहती हैं कि जब इन पे तोहमत लगी और इनको फिर पता चला ये बात कि मेरे ऊपर ये हालात बाहर पेश कर दिए गए, तो हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लम से कहा कि मैं कुछ दिन के लिए अपने माँ बाप के घर चली जाऊँ, तो आपने क्या कहा? चली जाओ। तो खुश होना चाहिए था आयशा को, क्योंकि कभी जाने ही नहीं देते, तो क्या कहा? आयशा आप चली जाए। तो आयशा रो पड़ी, अल्लाह के नबी आप मुझे जाने पे कह रहे हैं, मुझे मिस ही नहीं करेंगे। ये मोहब्बत की डोरी है ना। वो तो एक वक्ती तौर पे एक उनके ऊपर इतनी ज्यादा क्रूशियल किस्म की कैफियत आई हुई थी, अदरवाइज वो ऐसा ना करते। फिर इसी तरह से आप देखिए इन चीजों को कि बाद शौहर कहते हैं हम आपको भी भेजेंगे तो हम आपके साथ जाएंगे। जैसे एक बीवी ने अपने शौहर से कहा अच्छा मैं मैके जाऊंगी तो आप मुझे मिस करेंगे, कहने लगे नहीं, क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ हूंगा। कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं, साथ साथ रह रहा है, बीवी मैके के पीछे चल पड़े। अच्छा आप देखिएगा कि मैके वालों को बहुत गुस्सा आता है इस पर। एक इसको तो साथ जरूर लाना था, तुम आ भी गई हो तो ये अवेलेबल नहीं तुम्हें रहने देते। अब आप हंस रहे हैं इस कहते कि आपको अपनी सिचुएशन समझ आ रही है ना। द बेस्ट मैच वही है जो अल्लाह ने फितरी तौर पर रख दिया, थोड़ी देर साथ थोड़ी देर रहना, थोड़ी देर अलग छोड़ दें, अपने आप को बिजी करें। इस तरह से बिजी करें कि आपका भी टाइम अच्छा गुजरे, उनका भी अच्छा गुजरे। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी का मर्द घर बैठे, जॉब लेस मर्द जो होते हैं ना, वो आपको पता है कि बीवियों के लिए नासूर बन जाते हैं। हर बात पे तनकीद, हर बात पे ये क्यों हुआ, वो क्यों आया, बच्चे की शोर कर रहे हैं, घर क्यों गंदा है, और औरतें किसी से जा ही नहीं सकती। तो अल्लाह का एहसान मानकर इस चीज को रखते हैं। फिर आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 14 में अभी तक 15वां भाग्य, शोहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली औरत बेहतरीन रफीक हयात है। अब सवाल पैदा होता है कि शोहर से मोहब्बत कैसे करें? देखिए ना, भाई से मोहब्बत खून में डली हुई है, माँ जाया है। बाप से मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिल में डाल दी। ये जो खून के रिश्तों की मोहब्बतें होती हैं ना, ये हमारे ब्लड में डली हुई हैं, इनको अल्लाह ताला ने हमारे साथ रखा ही हुआ है। लेकिन जो मोहब्बत बाद के रिश्तों में होती है ना, उसके लिए याद रखिएगा कि वो लेनी पड़ती है। समझ आ गई है? आप और मैं जब तक कुछ मोहब्बतों को एक्वायर नहीं करेंगे वो नहीं मिलेंगी। उसी में एक शौहर की मोहब्बत है। कैसे करें? आप मोहब्बत करें। क्यों करें? अब आप गुस्से में कहें मैं क्यों करूं अपने शौहर से मोहब्बत, तो इसका जवाब है कि ना करें, क्या होगा? बस अब वो एक माँ थी ना, तो अपने बच्चों को कहती थी खाना है तो यही खाना है, और अगर नहीं खाना तो यही खाना है। आजकल की कुछ माएं क्या करती हैं, अच्छा ये नहीं खाना तो फिर वो खा लो, फिर ये नहीं तो वो नहीं वो। तो क्या आपके पास कुछ दूसरी चॉइस है शोहर के बारे में? ना करें मोहब्बत तो किन से करेंगे? और मोहब्बत फातह आलम, अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह दिलों में मोहब्बत डालता है। तो बीवी को मांगनी चाहिए। आप कहते नहीं होती महसूस, थक गए हम 15 साल 20 साल से मोहब्बत करते करते, मांगिए सीधी सीधी दुआ, मांगे अल्लाह मेरे दिल में मेरे शोहर की मोहब्बत डाल दे। देखिए ना, आपको इस घर में रहना है ना, जिस तरह भी रहेंगे रहना है ना, तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल में इस घर की मोहब्बत डाल दे। बस सिंपल सी बात है। फिर आगे देखिएगा, 5 नमाजों की पाबंदी करने वाली, रोजे रखने वाली, पाक दामन। अब ये 3 चीजों को हम इबादात के जिम्मन में एक ही पॉइंट में डालते हैं, यानी नमाज रोजे की पाबंद औरत। ये कैसे शौहर के लिए अच्छी बीवी है? लिख ले अपने पास, जो औरत अल्लाह के साथ मोहब्बत करेगी ना और इबादात में दिल लगाएगी, अल्लाह उसके शौहर के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देगा। अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीजें नसीब में आ जाती हैं, उनमें से एक चीज यह है कि जितना आप अल्लाह के करीब होंगे ना, अल्लाह बंदों को आपके करीब कर देगा। नमाज आप किसके लिए पढ़ते हैं? अपने लिए। आपकी नमाज के जैसे शोहर मोहब्बत कैसे करेंगे? कभी आपके साथ ज्यादती नहीं करेंगे, वो कहेंगे नमाजी औरत है इसको क्यों तंग करूं, ये रोजा रखे हुए अब इसके ऊपर कैसे चीखूं। आप अपनी इबादत करें अल्लाह के लिए, लेकिन आप देखेंगी कि दिलों में मोहब्बत उससे डलती है। फिर शोहर की इतात गुजार, इसको एक अलग पॉइंट बनाइएगा। इतात गुजार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओबीडियंट। शोहर की इतात, और लफ्ज इतात में आपको पता है क्या छुपा हुआ है? तौन से, खुशी से करना। एक लफ्ज होता है इतात और एक होती है तबा। इतात क्या है? खुशी से किसी की बात मानना। मसलन चले छोटी सी मिसाल लेते हैं, शोहर बाहर से आए, कहते हैं बेगम चाय बना दो। अब आपका तो मिजाज ही बिगड़ गया, पहले ही थके हुए थे, पहले इंतजार में थे, गुस्से में थे, और ऊपर से चाय भी बनानी पड़ गई, बिस्तर से निकलना पड़ा। खैर आप जाके चाय बनाते, मारे धाड़े ला के ऐसे टेबल पे पटकते हैं कि दो तीन घूंट तो प्लेट में गिर गए। ये बताइए कि क्या इस चाय से उनको खुशी मिलेगी? और चाय से जो थकन उतरनी थी वो उतरेगी? वो तो उतर जाएगी, लेकिन जो आपकी बात से उनको दोबारा थकन होगी वो कैसे होगा? खुशी से काम करें, ऑनर समझे है कोई मेरा। शौहर के कपड़े इसलिए करें तो ऐसे करें कि जैसे आप नमाज पढ़ रही हैं, है ना, जिसका कर रही हूं। कोई है जो मुझसे कहता है कुछ करो? कोई है जो मुझे रोकता है? कोई है जो मुझे मना करता है? तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इससे आपका दिल बहुत ज्यादा खुलेगा। फिर इसी तरह देखिए, शौहर को खुश रखने वाली, ये एक अलग पॉइंट है। शौहर को खुश रखने वाली बीवी मिसाली औरत कैसे हो सकती है? आप देखिए, जो दूसरों को खुश रखते हैं ना, वो खुद भी खुश रहते हैं। जो बीवी अपने शौहर को खुश रखेगी ना, ला मुहाला वो खुद भी खुश रहेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक काम आप खुशी से करते हैं ना, थकन नहीं होती। दुख से, तकलीफ से करेंगे ना तो आप थक जाएंगे। हर मुमकिन कोशिश रखें। कैसे करना है? रंग ढंग से, चाल चलन से, बातों से। देखिए हदीस में अल्फाज क्या हैं, जब इसका शौहर इसकी तरफ देखे तो इसे खुश कर दे। ये कैसे होगा? कपड़े अच्छे पहने, बनाए ठना। आपको तो एक औरत जब तैयार होती है अपने शौहर के लिए, तो उसको कहते हैं नफलों का अजर मिलता है। आप मेकअप कर रही हैं, आप अच्छे कपड़े पहन रही हैं, क्यों? कि आपके शौहर आपको देखें, तो ये सवाब है। सच बताइए, ये सवाब आसान है या रात की तहज्जुद उठ के पढ़ना आसान है? इसमें तो आपके जज्बात की तस्कीन भी हो रही है, खुश हो। तो औरत को वो रंग नहीं पहनने चाहिए जो मर्द को नहीं पसंद आते, वो कपड़े या वो हाल हुलिया अख्तियार नहीं करना चाहिए जो मर्द को पसंद हो, इल्ला ये कि फिर इसमें कोई दीन की हद टूटे। अदरवाइज आप कहते हैं कि हर मुमकिन तरीके से आप अपने शोहर के जज्बात को खुश रखें, अच्छे कपड़े पहने। अगर घर में दूसरे लोग रहते हैं तो आपकी तन्हाई का ऐसा वक्त हो कि आप नरम कपड़े पहने, रिलैक्सिंग कपड़े पहने। लोग वेस्टर्नाइज कपड़े बाहर देखते हैं, लोग बाहर इतने बेकार कपड़े पहनते हुए सड़कों पर लोगों को देखते हैं। अगर एक बीवी अकेले में वो कपड़े पहन लेती है तो मर्द के दिल में से तजस्सुस निकल जाएगा ना ऐसी औरतों को देखने का। तो ये भी एक औरत की कामयाबी की अलामत है। फिर इसके बाद देखिए अगली चीज जो बहुत अहम है, अपनी जानो माल शोहर पर कुर्बान करने वाली। मैंने ये जुमला बोला ना तो मुझे सबसे पहले कौन याद आया, आप में से कोई गैस करे? जी शाबाश, हजरत खदीजा रसूलल्लाह तआला। कितनी अमीर औरत थी, पैसे वाली थी। आपको पता है कि 13 साल मक्का में अल्लाह के नबी का खर्च पानी कहां से चला? आप जो काम करते थे पहले, कपड़े का काम था, या आप ताजिर थे, या बकरियां चराते थे नबूवत से पहले, तो जू ही नबूवत आई उसके बाद तो आपके पास टाइम ही नहीं था, आपने तो फुल टाइम दावा शुरू कर दी, तो कहां से आता था? खतीजा का माल था, सब दे दिया अल्लाह और उसके रसूल पे कुर्बान, जो चाहे कर दें। गुलाम आते थे अल्लाह के नबी को गिफ्ट करती थी। हजरत खदीजा ने अपना गुलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया, जिसको फिर आपने बेटा बना लिया। ठीक है, तो अपना माल नसींद के रखे। आप देखिए कि हजरत खदीजा ने अपना माल दे दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि आज हम अपने माल के मामले में शोहरों के साथ कैसा मामला रखते हैं? ये भी थोड़ी सी बात करने की जरूरत है। देखिए मुझे नहीं पता आप सबके यहाँ क्या हालात हैं, लेकिन वेस्ट में क्या होता है कि लड़कियाँ भी कमाती हैं, लड़के भी कमाते हैं, मियाँ बीवी दोनों ही जॉब करते हैं। ठीक है, अलग अलग अकाउंट होते हैं, किसी का जॉइंट अकाउंट होता है, किसी का कुछ है। किसी भी तरह से हो, आपका माल अगर आपके शौहर को यकीन हो ना कि इज्जत के साथ आप उसकी हकदार हैं, यानी मिसाल है कि शौहर पे हालात आ सकते हैं। पहली बात समझिए कि एक औरत का जाती माल जो है ना उसका अपना होता है। आप अपना माल जो है ना अपनी चीजें उसको अपनी चीज समझ सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने माल को शौहर के साथ ताल्लुक का इस तरह का जरिया बनाएं, जैसे आपको पता है कि अगर बच्चे हों तो औरत की डेथ हो जाए ना, बच्चों की मौजूदगी में औरत की डेथ हो जाए तो मर्द को उसके माल में से कितना मिलता है? 1/4 मिलता है। और अगर मियाँ बीवी हैं या वो औरत उसके कहीं और से भी बच्चे नहीं हैं और वो फौत होती है ना, तो उसके मियाँ को आधी जायदाद मिलती है, हाफ मिल जाती है। ठीक है, अब मर्द की तरफ से औरत का रेशो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज आपके पास जो है, अगर आज आपके सांस बंद हुए, आधा आपके शौहर का है, तो आप ये खूबसूरत जुमला क्यों नहीं बोल देते कि मेरी जिंदगी में मेरा माल मेरी चीजें सारी आपकी हैं, मेरे बाद आधा आपका है। कोई नहीं लेता, लेकिन मान होता है, मोहब्बत होती है। बहुत सारे शौहर बीवी की आपस की नाचाकियों की बड़ी वजह माल होता है। आप में से कितनी औरतें जो ये कह सकती हैं यकीन से कि आज तक कभी माली मामले में आपका झगड़ा नहीं हुआ अपने शौहर से? मुझे तो ये लगता है कि हमारे ईस्टर्न कल्चर में 80% झगड़ों में कहीं ना कहीं माल इन्वॉल्व होता है। या बीवी फजूल खर्च होती है तो मर्द उतना बे नहीं करना चाहते, या बीवी जाया करती हैं या ज्यादा मांगती हैं, या मर्द कंजूस होते हैं, या मर्द के पास होता भी और नहीं देती। तो समझ लीजिएगा कि मर्द की हैसियत देखे, दे सकता है कि नहीं। और मर्द अमूमन समझदार होते हैं माली मामलात में औरतों की नस्बत, तभी तो अल्लाह ताला ने उनको कवाम बनाया। हम जिस तरह एक जोड़ा 40,000 का लेके आ जाते हैं, कभी किसी मर्द को भी खरीदते देखा आपने? शादी पे भी अगर पहन ले तो बड़ी बात है, मर्द नहीं पहनते। ये औरतों के हौसले हैं। मैं जब लोगों के कपड़े देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा ये इतने हजार का इतने का ये आपने पहन। अच्छा लोग सोचते हैं कि पैसे नहीं है आपके पास, मैं कहती नहीं, अपनी जात पे इतने पैसे लगाने, ये पत्थर का बुत जिसकी पता नहीं अल्लाह की नजर में क्या औकात है। अपने आप को हमेशा छोटा समझें, मेरी क्या औकात है, मेरे जिस्म में गंदगी, मेरे अंदर गंदगी, अल्लाह के यहाँ पता नहीं मेरा क्या मुकाम है। और मैं 50,000 का जोड़ा पहन के फिर के लोगों को दिखा लूंगी तो धोखा दिया मैंने। आप अपना किरदार इतना खूबसूरत करें, आप सस्ता भी पहन ले लोगों को अच्छा ही लगे। तो लिहाजा माली मामलात में शौहर से नहीं उलझना चाहिए। देखिए एक हदीस का खुलासा सुना देती हूँ क्योंकि यहाँ बात हुई है, मैंने पीछे भी जिक्र किया था, आप लोग जरूर सुनिएगा वो लेक्चर, झगड़े क्यों होते हैं। लेकिन उसी के अंदर एक हदीस पेश की गई है, उसका खुलासा क्या है कि जब कोई औरत अपने शौहर से झगड़ा करती है, उस बेचारे का कसूर नहीं है, बस हालात उसके बस में नहीं होते। अब आप उससे वो चीज मांगते हैं, कहां से लाए, कहां से आपकी बात पूरी करे? और अगर वो बात आपकी पूरी करेगा तो लॉन्ग रन उसके बहुत नुकसान तो आपके उठाने पड़ेंगे। जब एक औरत अपने शौहर से, नेक शौहर से झगड़ा करती है, तो वो हूर जो अल्लाह ने जन्नत में उसके लिए रखी हुई है ना, वो उस औरत को कर्ज करती है। क्या कहती है? मैं अपने लफ्जों में सुना रही हूं आपको, हदीस मौजूद है, कहीं चाहेंगे तो रेफरेंस भी ले लीजिएगा। वो औरत कहती है कि देखो ये मेरा शौहर है असल में, क्योंकि सुनर और लेटर जाना तो जन्नत में ही है ना, ये मेरा शौहर है जो दुनिया में कुछ अरसे के लिए तुम्हारे पास है और तुम इसकी नाकदरी कर रही हो। जब ये फौत होगा देखना ये मेरे पास आएगा और मैं इसकी कितनी कदर करती हूं। कभी अपने शौहर से गुस्सा ना करें, झगड़ा ना करें, वल्लाह ही इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपको होगा। अब एक हूर की तरफ से बददुआ मिली तो अगले दिन हो सकता है कि अच्छा अच्छा काम फिर बुरा हो जाए। तो हमेशा खुशी का जरिया बने, नरमी मोहब्बत प्यार इस तरह के बन जाएं कि वो कहें कि हम आपके बगैर नहीं रह सकते, बेगम मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। एक बीवी का बड़ा मजे का जोक था, कहने लगी मेरे मियाँ कहते हैं तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो, इतनी अच्छी लगती हो कि मेरा दिल करता है तुम दो होती। ये लाड के जुमले हैं ना, यदि तुम जैसी एक और होती। एक शौहर है वो कहते हैं मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, बिल्कुल बट बिल्कुल तुम जैसी होगी, तुम ढूंढो मेरे लिए। ये लाड है, ये प्यार है, रिलैक्स रहिए। क्या आप देखिए, मैं इसको एक छोटा सा डिफरेंट एंगल देख के खत्म करूंगी इस बात को, टॉपिक को, कि आप इस बात को देखिए कि क्या आप और मैं जहां पैदा हुए वो आइडियल हालात है। लिखिए जरा, ये बहुत क्रिटिकल बात है और मुझे लगता है कि इससे मुझे आपको सबको ही बहुत फायदा होगा। बल्कि ये जो मैंने हदीस आपको बताई ना, ये अगले टॉपिक में आ रही है, मैं वो इसके साथ इंशाल्लाह लेती हूँ। अभी छोटा सा टॉपिक है लेकिन हम इसी के साथ कर लेंगे कवर। आप देखिए कि आप कहते हैं कि शौहर नहीं अच्छे, आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हिज हैबिट्स, आई थिंक इट इज गुड बट ही इज नॉट गुड। मियाँ भी अभी इसको जनरल कर लेते हैं, शौहर नहीं बीवी, क्योंकि दोनों का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा कर चुके हैं ना। आप कहते हैं मुझे अच्छी बीवी नहीं मिली और आप कहती हैं मुझे अच्छे शौहर नहीं मिले, ठीक है। आप थोड़ा सा पीछे जाएं, देखिए मोहब्बत अपनी जगह बट रियलिटी भी होती है कुछ। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको आइडियल फादर मिले क्या? आप में से, मेरे में से हर एक कह सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बाप हमारा बाप था, और खदीजा जैसी बेटी, या जिस तरह हजरत खदीजा से अल्लाह के नबी का ताल्लुक था, क्या हम में से हर एक को आइडियल बाप मिला है? देखिए, जो जुआरी होते हैं, जो नशई होते हैं, जो शराबी होते हैं, उनकी भी तो बेटियां हैं ना। तो और जब औरतों को, बच्चियों को गलत किस्म के बाप मिल जाते हैं तो छोड़ती हैं या उनसे जुलझती हैं? आप देखेंगे फिर भी मोहब्बत करेगी बेटी। बाज़ वक़्त मैंने देखा मियाँ बीवी की नहीं बनती, जुबान के तेज हैं, गुस्से में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बेटी को जान से प्यारा रखते हैं। मैंने ऐसी चीजें देखी हैं लोगों में कि बीवी के साथ इंतहाई बदजुबानी, बेटी को कहते हैं ये मेरी गुड़िया है, ये मेरी चांदनी है। तो बाप भी तो आइडियल नहीं मिले ना। चलिए माँ पे जाइए, किसकी माँ आइडियल है? हम में से किसकी माँ कह सकते हैं कि वो दुनिया की बेहतरीन अखलाक वाली, किरदार वाली औरत है, हजरत खदीजा जैसी औरत है? नहीं है ना। कमोबेश हर जगह एक्सेप्टेंस ही है ना, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन किरदार अपनी जगह। चलिए आपके भाई, किसका भाई आइडियल भाई है? मैंने ऐसी बहनें देखी हैं जो अपने नशे वाले भाइयों की टेक केयर करती हैं, और ऐसी बहनें देखी हैं कि जो अपने भाइयों के ऐब भी छुपाती रहती हैं बेचारी। मिल गए ना? तो मेरा लो के बात अब आप समझ गए। जब हमने अपने खून के रिश्तों को ऐसे ही कबूल कर लिया, माँ बदली आज तक किसी ने? छोड़ा माँ को, बाप बदला, बाप को छोड़ा, और आप झगड़े करें, लड़ाई करें, नुकसान क्या होगा? बात वहीं की वहीं रहेगी। पहले लोग कहते थे जिस बर्तन को तोड़ नहीं सकते उसको ठंगोरना भी नहीं चाहिए, यानी उसमें आप एक प्लेट को तोड़ नहीं सकते तो फिर आप उसके अंदर एक छोटी सी दरार भी डाल देंगे तो आपका ही नुकसान है, वो टूटी हुई प्लेट आप देखते रहेंगे और आपको तकलीफ होगी ना, ठीक है। फिर इसी तरह से कबूलियत के साथ होता पता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। मिजाज में गुस्सा ना हो, और अगर गुस्सा है तो उस पर काबू हो, जुबान छोटी हो, बर्दाश्त हो, शुक्रगुजारी हो, जो मिला है उस पे नजर हो, जो नहीं मिला उसको अपना ना समझें, तो कभी भी घर नहीं टूटेंगे। खुलासा, मिसाली शौहर और मिसाली बीवी एक दूसरे को एज इट इज कबूल करें, एज इट इज, और उनकी खामियों को आहिस्ता आहिस्ता दूर करने की कोशिश करें, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। कहते हैं कि एक औरत 5 साल के अंदर अपने शौहर को बदल देती है। गैर महसूस तरीके से शौहरों के अंदर बदलाव का रुझान ज्यादा होता है। देखिए मैं खुद भी औरत हूं, मैं आपको जो बात कहूंगी वो अपने आप को भी कहूंगी। औरतें कम बदलती हैं, मर्द ज्यादा बदलते हैं। आप अपने खानदान पर नजर डालें, औरत आप किसी दूसरे खानदान की ले भी आए ना, 10 साल बाद भी आपको उसमें उसके खानदान का असर दिखेगा। मर्द बदल जाते हैं, मर्द, वो कहना चाहिए ना कि औरत की जुल्फ का असीर अल्लाह ने औरत के साथ लगा जो दी उसकी जरूरत, मर्द बदल जाते हैं, औरतें नहीं बदलती इल्ला माशाल्लाह। कुछ मर्द भी नहीं बदलते, मैं नहीं कह रही कि सब ऐसे हैं, लेकिन जनरल बात यह है कि औरत जो है वो मर्द को बदल सकती, शर्त एक है कि पहले वो खुद बदले, पहले वो खुद अपने ऊपर रखे। आप पहले बर्दाश्त तो करें, आप थोड़ा सब्र तो करें, फिर देखिए कि आप मालिक होंगी। आप जिस शख्स को अपना शौहर कहती हैं आप उसकी इज्जत करेंगी तो आप एक इज्जत वाले शौहर की बीवी कहलाएंगी, आप उसकी बेइज्जती करेंगी तो वो एक बेइज्जती वाला शौहर होगा। अकलमंद औरतें बेवकूफ मर्दों को बाइज्जत बना लेती हैं अपने घर वालों की नजरों में, और बेवकूफ औरतें अच्छे भले शरीफ मर्दों को जलील कर देती हैं अपने घर वालों की नजरों में कि हमने किसके पल्ले डाल दिया। तो ये मेरा आपका अपना नसीब है, किस्मत आपकी मेरी। वो कहते हैं ना, वो पहले बसों के पीछे लिखा होता था, नसीब अपना अपना। आज भी वो याद है, वो बत्तियों के ऊपर जगह होती, एक तरफ नसीब अपना अपना, किस्मत अपनी अपनी, कोई बदल नहीं सकता। लेकिन एक अच्छी एडवाइस तो हम एक दूसरे को दे सकते हैं ना। अब सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक जिस पे इंशाल्लाह ये बात पूरी होगी, हम उसको कर लेते हैं, अहमियतुल हुकूक जौज। पेज 56 है किताबु तलाक, अहमियतु हुकूक जौज, शोहर के हकूक की अहमियत। एक छोटी सी एडवाइस दूंगी, आप इस पूरे टॉपिक को सुनते वक्त सिर्फ और सिर्फ खुद को सोचें, आप और आपका शोहर, ठीक है? और हक बड़ी बड़ी चीज है, क्योंकि अगला टॉपिक फिर दूसरी तरफ भी आएगा ना, बीवी के भी हकूक आएंगे। तो इस वक्त मैं आप एक बीवी न होने के नाते से इसको सुनेंगे। पहली बात है, जो औरत अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती, वो अल्लाह का भी हक अदा नहीं कर सकती। कैसे? आइए इसकी दलील पढ़ते हैं। अन अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफा कला कला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोहराइएगा सब मिलके, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला तुअद्दिल मरअतु हक्का रब्बिहा हत्ता तुअद्दिया हक्का ज़ौजिहा वलौ सअलहा नफ्सहा वहिया अला कतबिन लम तमनाहू। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, औरत इस वक्त तक अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक अपने शौहर का हक अदा ना करे। सोचिए, देखिए, एक जुमला पहले भी बोलती हूँ या फिर बोलती हूँ, शायद कोई नया बंदा सुन रहा हो, कि शादी से पहले जो मुकाम माँ बाप का है ना, रजा में, खुश रखने में, एतात में, शादी के बाद वो शोहर का है। बस इतनी सी बात है, ठीक है? उसको सामने रख के आगे चले। फरमाया, औरत अगर पालान यानी घोड़े या ऊंट पर बैठने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गद्दी पर सवार हो, यानी सफर करने के लिए तैयार है, ट्रैवलिंग में, अगर औरत अपने पालान यानी घोड़े या ऊंट पर बैठने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गद्दी पर सवार हो और मर्द इसे बुलाए, तब भी औरत को इनकार नहीं करना चाहिए। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। क्या समझे? देखिए, सफर के लिए तैयार जब बंदा होता है ना, तो उसका माइंड उससे मुख्तलिफ होता है जो घर में है। मुराद ये कि औरत अपने किसी पूरे प्लान के अंदर भी चल पड़ी है, लेकिन उस वक्त भी उसको शौहर को मना नहीं करना। देखिए, ये मत सोचिए कि ये हर वक्त होता है, ये इस हदीस से मुराद फिर एक जालिम शौहर और जाबिर शौहर है। अगर आप बाहमी अंडरस्टैंडिंग से चलती हैं और आप वक्त पे हर हक वैसे ही दे देती हैं, तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी। रास चलते में, अब आप कहते हैं लोग कितनी बड़ी बात है जी, आप सफर पे जा रहे हैं और आपको रोक लिया गया, तो कई दफा लॉन्ग सफर में आप गाड़ी रोक कर वॉशरूम नहीं यूज करते? क्यों रोकते हैं? जरूरत होती है ना। आप कहते नहीं बैठे रहो, तो हो सकता है बच्चा अपने आप को गीला कर दे। बस जो जरूरियात होती है, वक्त के मुताबिक देखना होता है, इसको कोई चिड़ नहीं बनाना चाहिए, और ये हर वक्त की कहानी भी नहीं होती। ऐसी हदीसों को पढ़कर हमेशा बी पेशेंट, और ये अपने आप को कहें कि ये हर वक्त की बात नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका बन जाए तो करना। एक तरफ तो ये हदीसें इस एक्सट्रीम में, दूसरे बास ब्रदर्स भी यही हदीसें कोट करते हैं। याद रखिए, दोनों मामले बराबर के हैं। मर्द अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, औरतें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, तो घर की गाड़ी चलती रहेगी। फिर अगली बात, किसी औरत के लिए अपने शौहर के हकूक कमा हक्कहू अदा करना मुमकिन ही नहीं। जरा इसको तो कान खोल के सुनिए, यानी एक औरत के ऊपर शौहर का जो हक है, जितना होना चाहिए उतना वो अदा ही नहीं कर सकती। मुझे यहाँ कुरान की आयत याद आ रही है, फत्तकुल्लाह हक का तुकाती ही, यह आयत उतरी कुरान में। अल्लाह से उतना डरो जितना उससे डरने का हक है। तो सहाबा घबरा गए, अल्लाह के नबी, हम कैसे अल्लाह से उतना डरें जितना उसका हक है? कमा हक का हुआ ही लफ्ज है, कहा हम इतना नहीं डर सकते, हम तो बस उतना डर सकते हैं जितनी हमारी औकात है। तो फिर उस पर अगली आयत उतरी के फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तुम अल्लाह से उतना तो डरो जितनी तुम्हारी इस्तेआत है। यहां भी यही बात है, आप अपनी हत्तुल वसा कोशिश करती रहें। हदीस पढ़ते हैं, अन अबी सईद रदी अल्लाह अन्हो अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, हक्कुल जौजी अला जौजतिही अन लौ कानत बिही करहतुन फल हसतहा मा अद्दत हक्कुहु। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शौहर का बीवी पर हक इस कदर है कि अगर शौहर को जख्म आ जाए और बीवी इसको चाट ले तब भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। देखिए, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ऐसा करना है, इससे मुराद ये है कि कितना हक है इसको समझो। बात वाज़ेह है, ये मुहावरे का भी एक अंदाज होता है, यानी ऐसी बात की नौबत आएगी नहीं लेकिन समझो कि अगर ये करना पड़े तो करोगे, तो फिर बाकी बातें तो सारी उससे छोटी हैं। आप इसको इस एंगल से सोच लें कि शौहर का हर मुतालबा इस हदीस में पेश करदा बात से तो छोटा ही है ना, तो उसको कबूल किया जा सकता है, शर्त दे कह के अल्लाह के किसी कानून से ना टकराए। शौहर बीवी को वो बात का हुक्म नहीं दे सकता जो नाफरमानी की हो, गलत काम में नहीं। ला तातुल मखलूकिन फी मासियत खालिक, और ये जो हदीस हमने पढ़ी है ये हाकिम इब्ने हब्बान इब्ने अबी शैबा दारकुतनी और बहकी की है। अगला मसला, शोहर के हकूक अदा ना करने वाली बीवी के लिए जन्नत की हूरें बददुआ करती हैं। वो हदीस जो अभी पीछे कोट की थी यहाँ आ गई। अन माजिब ने जबल रदी अल्लाह अन्हु काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप पढ़िएगा, ला तुज़ी इम्रातुन ज़ौजहा इल्ला कालत ज़ौजतुहु मिनल हूरिल ईन ला तुज़ीही कातलकिल्लाहु फइन्नमा हुवा इंदकि दखीलुन औशक अन युफारिकिका इलैना। अब इस हदीस को सुन के तो कोई अपने शोहर से नहीं लड़ेगा, आई एम श्योर जितनी लंबी बातें की हैं वो सारी मेरी बेकार हो जाएंगी। इस हदीस ने तो देखिएगा हम सब को शुक्रगुजार बना देना है। कैसे? हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई औरत अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाती है तो मोटी आंखों वाली हूरों में से इस नेक शौहर की बीवी कहती है, अल्लाह तुझे हलाक करे, इसे तकलीफ ना दे, ये चंद रोज के लिए तेरे पास है, अन करीब तुझे छोड़कर हमारे पास आने वाला है। इब्ने माजा की रिवायत है। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी बुरी बात है, ये हमसे नहीं बर्दाश्त होता। देखिए, जिंदगी में आप चाहते हैं कि आपके शौहर दूसरी शादी कर ले? यानी एक औरत है वो अपने शौहर का हक नहीं देना चाहती, तो फिर शौहर दूसरी शादी कर ले, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है ना? हम नहीं कहते कोई करे दूसरी शादी, इट्स फाइन, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि जन्नत में जाकर जब एक मर्द को, आपको तय कि 70-70 बीवियां भी मिलेंगी, हूरें भी मिलेंगी, आप और मैं इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को जितना ज्यादा उस जन्नत के काबिल करेंगे, आपके जन्नत में जाकर उनके साथ रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लोग कहते हैं हाय अच्छा क्या होगा, हाय बीवियां और भी होंगी मेरी शौहर के साथ, तो थोड़ा सा इस इश्यू को समझ लीजिएगा कि आप और मैं किस तरीके से अपने ऊपर लेंगे इस चीज को कि मियाँ कह दें, अल्लाह कहता है 70 ले लो और वो कहता है मुझे एक ही काफी है। बात समझे? आप अपना ऐसा खूबसूरत किरदार बनाएं कि आपके शौहर वहां के अल्लाह तआला मुझे एक ही काफी है। वो एक बीवी थी ना, तो वो यही कहती थी कि अच्छा आपको जब वो कहेंगे ना तो आप कह दीजिएगा नहीं मैंने बस इसी के साथ रहना है। हम बीवियां चाहती हैं हम यहां भी अपने मर्दों का खूब जरा कंट्रोल रखें और जन्नत में भी हम उनके साथ लेकर चले। तो ये वो चीजें हैं जो हम सब के लिए बहुत जरूरी होती है। इसके ऊपर अगर आप और मैं अपने आप को बांधें तो यकीन करें ये चूंकि हकूक का मामला है ना, तो इसके ऊपर फिर हमें फिक्र करने की जरूरत है। इसके बाद अब अगला टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, हालांकि है वही टॉपिक, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह यहाँ रोकते हैं। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته